الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مراتب الإسلام، جیسا کہ کل آپ کے سامنے ادارے کی کچھ تفصیلات آئی تھیں ہمارے سیکرٹری صاحب کی طرف سے، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہاں کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں، دین کے کون کون سے اہم کام انجام دیے جاتے ہیں اور کتنے اچھے پیمانے پر ہوتا ہے، اور بڑی تعداد یہاں پر کام کرنے والوں کی ہے، 50 سے زیادہ سیلریاں جو ہے نا وہ ہم کو ہر ماہ ادا کرنے پڑتے ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس صورتحال ہے، کام کی واقف ہیں آپ، بہت ہی کم ساتھی ہوں گے جو نئے ہیں، زیادہ تر تو وہ ہیں جو اس ادارے سے اچھی طرح سے واقف ہیں. ادارہ اور ادارے کے کام جو ہیں وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے چلائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے چلائے جاتے ہیں. اور ایمان والے کا کام اللہ کے کہا کو ماننا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو کرنا ہے. ہم نے رمضان کے روزے رکھے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پورے کرا دے. اور ہم تراویح پڑھ رہے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، اور پورے مہینے کی تراویح پڑھنا ہے. قرآن پاک ہم نے سن لیا اس سہولت کی وجہ سے کہ پہلے قرآن پاک سن لینا بھی نماز میں سنت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ادھر ادھر ہو جائیں اور ہمارا قرآن پاک ادھورا رہ جائے یا سفر وغیرہ پیش آ جائے، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ جلدی سن لیتے ہیں. بقیہ پڑھنا تو پورا ہے، تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ حکم ہے، تراویح حکم ہے اللہ کا، تراویح حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جیسے تراویح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال سے، 1450 سال سے، ویسا ہی پڑھنا ہے 1450 سال سے. جیسے تراویح پڑھتے ہوئے آ رہی ہے امت مسلمہ ہر زمانے میں، ویسا ہی پڑھنا ہے. اس میں جو کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ان تبدیلیوں کو قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ صحیح راستہ نہیں ہوتا ہے وہ، چاہے وہ غلط راستے کو اختیار کرنے والے کوئی ہوں، کتنی ہی مقدس جگہ کے نظر آتے ہوں اور کتنی ہی مقدس شکل و صورت کے نظر آتے ہوں. کام تو ہم کو وہ کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا، اور وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس کو علماء سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، وہی ان کا کام ہی وہ ہے کہ وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ وہ ذاتی تو کوئی اپنا مذہب چلا نہیں سکتا ہے، دین جو ہے کوئی ذاتی نہیں چلا سکتا، کسی کی جو ہے نا ٹھیکے داری اس پر نہیں ہوتی، کوئی مولوی اپنا دین نہیں چلا، اپنی طرف سے دین کے نام سے کوئی چیز نہیں چلا سکتا، سب چیز وہی جناب چلانی ہوتی ہے، امت میں وہی بات بتانی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے. اس لیے تراویح پڑھنا ہے پوری، اور مجاہدہ کرنا ہے اس کے واسطے. تو ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی تراویح پڑھ رہے ہیں، سارے کام اللہ کے حکم کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو علم ہمیں عطا فرمایا ہے، وحی کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل فرمایا، اور اس علم میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی وہ یہ کہ ہم اللہ کے ہیں، اور ہمارے پاس جتنی نعمت ہے وہ سب اللہ کی ہے. اللہ ہمارے خالق ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارے حاکم ہیں، انہی کا حکم چلتا ہے، ان کے ہی پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوئے، ان کے مارنے پر ہم مر جائیں گے، ان کی تندرست رکھنے سے ہم تندرست ہیں، وہ اگر چاہیں تو بیمار کر دیں، ان کی شفا دینے سے ہم شفا پاتے ہیں، ان کے غریب کرنے سے آدمی غریب ہوتا ہے، ان کے امیر کرنے سے آدمی امیر ہوتا ہے، لیگل اسٹیٹس ان کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہیں فراہم کر دیں، جس کے لیے چاہیں فراہم نہ کریں، تعلیم ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں مکمل کرا دیں، جس کو چاہیں مکمل نہ کرا دیں، شادی ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد ان کے ہاتھ میں ہے، نوکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز حاکم اللہ پاک ہیں، وہ جب چاہیں گے حکم دے دیں گے، ساری انسانیت مر جائے گی، تو وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور رب بھی وہی ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ پوری کرتے ہیں، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ جو فرشتے وغیرہ کا عنوان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے لگایا ہوا ہے ان کو کاموں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری وہ کرتے ہیں और उनकी मुखालिफत नहीं करते, अपनी मर्जी से वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी फरिश्ते के हाथ में भी कुछ नहीं है। मीकाईल अलैहिस्सलाम पानी के जिम्मेदार हैं, पूरी दुनिया में पानी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो मीकाईल अलैहिस्सलाम, लेकिन एक गिलास पानी का वो किसी को नहीं दे सकते अपनी मर्जी से अल्लाह के हुक्म के बगैर, और एक गिलास पानी का रोक नहीं सकते किसी से वो। ऐसे हाल हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का है जो जान निकालने के ऊपर मुकर्रर है, ऐसे ही हजरत जुबैर अलैहिस्सलाम का काम था जो रोजे लाने के ऊपर मुकर्रर थे। अल्लाह तबारक व तआला ही है असल में मुदब्बिर अम्र, वही है रब, वही है पालनहार, वही है वो हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, रब हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हमारा सब कुछ है, तो इसलिए और आइंदा का जो की हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह के हाथ में है, मरने के बाद हमेशा हमेशा की ज़िंदगी शुरू होने वाली है वो अल्लाह के हाथ में है। मरने के बाद अच्छा अंजाम और बुरा अंजाम मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह के हाथ में है। अच्छे अंजाम से कौन लोग हमकिनार होंगे उसकी तफसीलात बयान की गई कुरान पाक में अहादीस मुबारक में, बुरे अंजाम से किन लोगों को साबिका होगा उसकी तफसीलात बयान की गई हैं कुरान पाक में अहादीस मुबारक में। हम यहाँ तरावी में जो सुनते रहे वो यही तफसीलात हैं, जिसको अरबी अच्छी आती है उसको खूब पता है कि कितना तफसील से अल्लाह तबारक व तआला अच्छे अंजाम और बुरे अंजाम की तफसीलात को इंसानों के सामने खोल खोल कर महज शफ़क़त के तौर पर बयान फरमाया, वरना अल्लाह को क्या गरज पड़ी है किसी से। जाओ जिसको जहन्नम में जाना है जहन्नम में जाओ, जन्नत में जाना है जिसको जन्नत में जाओ। वो तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तआला ने शफ़क़तन मेहरबानन मेहरबानी के तौर पर इंसानियत पर रहम फरमा कर ये निज़ाम बयान फरमाया है जो हमें बताया गया है। इसलिए हक़ तआला शानहु ने हमारे लिए जो चीज़ तय फरमाई हुई कि तुम अल्लाह के हो और तुम्हारी हर चीज़ अल्लाह की है। इंसान के पास जो आफाकी नियमतें बाहर इंसान के जिस्म से हैं वो माल के ज़रिए से चूँकि ज़्यादा वाबस्ता होती हैं, इसलिए माल को मेन मरकज़ी हैसियत से बयान किया जाता है बाहर में। यानी यूँ कहते हैं जान और माल, जान अल्लाह की और माल अल्लाह का, जान अल्लाह की और माल अल्लाह का। तो जान को अल्लाह तबारक व तआला के कहे पर लगाते रहना और माल को अल्लाह तआला के कहे पर लगाते रहना जो जहाँ उन्होंने कहा है, ये उनका हम उनके हैं इसका प्रूफ देना है। अगर हम ईमान लाते हैं कि हम अल्लाह के हैं, हमने मान लिया कि हाँ भाई हम अल्लाह के हैं, तो फिर हमको साथ प्रूफ देना पड़ता है कि हम अल्लाह, हम अपनी जान आपके लिए पेश कर रहे हैं। पूरी यही वजह है ना, ये रोज़ा रखना क्या है, जान को ही पेश करना है। रोज़ा जानी इबादत है, नमाज भी जानी इबादत है और रोज़ा भी जानी इबादत है, और ज़कात जो है ना ये माली इबादत है, और हज जो है जानी और माली दोनों की इबादत है। इसी तरीके पर जिहाद भी जानी और माली दोनों की इबादत है। तो जान और माल दोनों से अल्लाह तबारक व तआला के होने को, साथ होने को, अल्लाह तआला की हिमायत को ज़ाहिर करना होता है, वफ़ादारी को ज़ाहिर करना होता है। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए जान माल कहाँ लगाई जाएगी, उन्होंने ज़ाहिर के उनको तो कुछ ज़ाती तौर पर तो नहीं चाहिए कि भाई उनके पास जमा करते जाएँ, उनके बताई हुई जो जगह हैं, जो काम हैं, उन कामों में लगाना होता है। ये मदरसे और ये मस्जिदें और ये इदारे और बच्चों को हाफिज बनाना और आलिम बनाना और खिदमत करना और लोगों को सर्विस देना, ये उनके कहने की वजह से हैं। तो ज़ाहिर है कि इसमें पैसा लगता है, तो अगर इसमें पैसों का तकाजा लगेगा तो अगर तुम ईमान वाले अल्लाह के हो तो अल्लाह के काम पे पैसा लगाओ, ईमान वाले तुम अल्लाह के हो तो अल्लाह के काम के लिए अपनी जान लगाओ, अपना वक्त लगाओ। और ये दोनों चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला को तरजीह देना इन दोनों चीज़ों में, ये ईमान का इम्तिहान है। कुरान पाक में ये बात साफ तौर पर बयान फरमाई गई है कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारे माल जो कुछ तुमने कमाए हैं और जमा के तुमने रखे हैं और तुम्हारा बिजनेस और कारोबार और नौकरी और तुम्हारे पसंदीदा मकाना जो तुमने खुशी से शौक से बनवाए हैं, अगर ये तुमको ज़्यादा महबूब हों अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के दीन की मेहनत से, अल्लाह के लिए दीन के, अल्लाह के दीन के अंदर लगाने से, अगर तुमको ये ज़्यादा महबूब हों तो ये तुम्हारे फेल होने की अलामत है, तुम अजाब का इंतज़ार करो और तरबस। मतलब ये कि ये चीज़ों की मोहब्बत है हमारे अंदर, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अल्लाह की होना ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल की होना ज़रूरी है, अल्लाह के दीन की होना ज़रूरी है। हर मुसलमान के ज़िम्मे ये है कि अल्लाह का दीन फैले, अल्लाह का दीन बच जाए, अल्लाह के दीन का बोलबाला हो, अल्लाह का कलमा सर बुलंद हो, अल्लाह तबारक व तआला का कलमा बुलंद हो जाए और सारे आलम में अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, सारे आलम में अल्लाह का हुक्म ज़िंदा हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ज़िंदा हो जाए,
लोग एज ए कल्चर जो है सकाफत और तहजीब के अतबार से हुजूर वाले कल्चर को एक्सेप्ट कर लें, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसके दिल में ये जज्बा हो। हमारे आइडियल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तरीका जो है ना वो हुजूर का चलेगा, कल्चर और सकाफत और तहजीब जो है ना वो हुजूर की चलेगी। तो मुसलमान की ख्वाहिश ये होना है कि सारे दुनिया में ये चीज़ फैल जाए और अल्लाह का कलमा यानी अल्लाह को मानने वाले सब हो जाएं, अल्लाह की बंदगी करने वाले हो जाएं। हर मुसलमान के जिम्मे ये है। इस वक्त मेरे दोस्तों फितनों के ज़माने में और इस मुल्क में जहाँ पे हम रहते हैं, हम सबको पता है कि यहाँ पूरी मेरी मल्टी नेशनल जगह है, पूरी जहान के लोग होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम बैठे हुए बजाय अपने अपने मुल्कों के अंदर होता है कि जहाँ जिस मस्जिद में आप हैं उस मस्जिद के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कितने मुल्कों के लोग एक एक मस्जिद में मिलेंगे, 8, 10, 15, 20 मुल्कों के आदमी एक एक मस्जिद में मिल जाते हैं आपको, आप अंदाज़ा फरमाइए। इस जगह पर ये यानी ये जगह पर होना पूरी दुनिया में होने के बराबर है, यहाँ के तकाजे पूरी दुनिया के तकाजे हैं, यूँ समझ लीजिए आप। यहाँ दीन को जिंदा कर देना, दीन को बचा लेना, पूरी दुनिया में दीन को जिंदा कर देना है, दीन को बचा लेना है, जगह ही कुछ ऐसी है। इसी वजह से पूरी दुनिया पे दादागिरी है, इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इनका अपना वो गलबा चाहते हैं, अपना अपने असरात और तहजीब वगैरह के अतबार से भी जो फैशन जो चीज़ें चलाना चाहते हैं वो चलते हैं। इस्लाम की मोहब्बत चलाना है तो भी यहाँ से ये मरकज़ बनेगा, और इस्लामी फोबिया चलाना है तो भी ये मरकज़ बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खसूसियत रखी हुई होती है बाज़ जगहों में, बाज़ इलाकों में, बाज़ हालात में। तो इस मुल्क में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको रखा है, यहाँ दीन को सरबुलंद होने की फिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और वो होगा अपने माल और अपने जान और सलाहियतों को लगाने से। हमारी सलाहियतों का हिस्सा, कुछ हिस्सा दीन के लिए लगना ज़रूरी है। बहुत सलाहियत वाले साथी हैं यहाँ पे, जो आता है वैसे नहीं आता कोई बेवकूफ़ उठ के, आमतौर पर जो आएगा वैसे माल के भी अच्छा खासा माल उसको खर्च करना पड़ता है, और उसके और सलाहियत के अतबार से भी खूब पढ़ लिख के लोग आते हैं यहाँ पर। तो सलाहियत जो है ना हमारी असल जो इस वक्त लग रही है, अल्लाह माफ़ करे, दुश्मन को ताकत पहुँचाने पर लग रही है। इन्होंने ब्रेन खरीदा है, ये दिमाग खरीदते हैं, ये सलाहियतें खरीदते हैं, हम सबको पता है। जो जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाला है, जो जितने ज़्यादा अच्छा क्वालिफिकेशन रखता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, तो वो इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। उनकी सलाहियतें काहे में इस्तेमाल कर रही हैं, रिजल्ट क्या है उसका, एंडिंग क्या है उसकी। हमारी सलाहियतों का एक हिस्सा अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए लगना है। हम ये सोचें कि अल्लाह जो आपने मुझे सलाहियत दी है उससे आपका कलमा, आपका दीन जो है ना वो सरबुलंद हो जाए, उसकी इशाअत की शक्ल हो जाए। अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए दो, आपका जो वक्त है वो अल्लाह के दीन के लिए चाहिए, आपके वक्त में से कुछ हिस्सा दीजिए, आप डॉलर कमाइए, जिस काम के लिए आए हैं उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। नियत अपनी सही कर लीजिए कि हम दीन की खिदमत असल करेंगे, पैसे भी कमा लेंगे, बुरा थोड़ी है, पैसे कमाना कोई बुरा होता तो आते ही हम, बिल्कुल भी जायज़ है, लेकिन दीन की खिदमत के बगैर जायज़ नहीं है। पैसे कमाना दीन की खिदमत के साथ जायज़ है, दीन की खिदमत के बगैर जायज़ नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ वालों को भी फ़ायदा पहुँचाना है, यहाँ वालों को भी दीन से वाकिफ़ कराना है, और हमारी अपने दीन की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर रहते हुए अपनी सलाहियतों को और अपने वक्त को दीन को देना ज़रूरी है, ताकि उससे दीन जिंदा हो पहले, और इसी से जो है ना ये इदारे और ये मस्जिदें और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ये फलेंगे फूलेंगे। और जो पैसा हम कमा रहे हैं, थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं, जो अल्लाह ने हमें दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो अल्लाह का दिया हुआ है, हम अपनी सलाहियत से कमाए सो नहीं हूँ। अपनी सलाहियत से कमाए सो है बोलना, ये कारून का जुमला है। हारून ने कहा था कि ये मैं अपनी सलाहियत से कमाया हूँ, लिहाजा मैं इसमें से नहीं दूंगा। हारून ने ये कहा था कि मैं अपनी सलाहियत से कमाया हूँ, मैं इसमें से नहीं दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये समझाया कि सलाहियत किसकी दी हुई है, एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर दी तो हो गया, खिस्सा खत्म हो गया था, सलाहियत सब रुखसत हो जाती। सेहत किसकी दी हुई है, जान किसकी दी हुई है, हाथ पैर किसके दिए हुए हैं, दिमाग किसका दिया हुआ है, दिल किसका दिया हुआ है, किडनी किसकी दी हुई है, लीवर किसका दिया हुआ है, खून किसका दिया हुआ है, रक्त किसकी दी हुई है, और जो हमारे ये माल जो है किसका बनाया हुआ है, पैसा जो है वो किसका बनाया हुआ है, चीजें वो किसकी बनाई हुई। आप ये कहेंगे मैं अपनी सलाहियत से कमाया हूँ, ये नहीं है। हारून का जुमला है अला इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिन अल-क़ुरून मन हुवा अशद्द मिन्हु क़ुव्वा वो अक्सर जमा। अल्लाह ने फरमाया कि इसको ये पता नहीं है कि इससे ज्यादा ताकतवर लोगों को हमने पछड़वा के खत्म कर दिया है, कभी के बर्बाद कर दिया है, कुछ हिसाब में नहीं है वो लोग, ये तो कुछ हिसाब में नहीं है, ये एक बंदे से क्या होने, इससे ज्यादा ताकत वाले गुजर चुके हैं और इससे ज्यादा माल को जमा करने वाले गुजर चुके हैं। मन वाशद में हुआ वो अक्सर जमा, जमा करने के एतबार से भी ज्यादा थे और कुवत के एतबार से भी ज्यादा थे, उनकी हीकर हमने निकाल दी, उनकी अकल को हमने निकाल दिया है, तो तुम भी शुमार में हो। कारून को यह समझाया लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आया। तो हमारी जो सलाहियत है, जो हमारी जो कमाई है, वो अल्लाह के फजल से हमें मिली है, जो हमें पैसा मिलता है अल्लाह के फजल से मिलता है। और हम अपनी सलाहियत से क्या करते हैं, कमाते हैं जन्नत को या जहन्नम को। बहुत कम लोगों के जहनों में ये बात रहती है, हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो हम क्या कमाते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं। हम या जन्नत कमाते हैं या जहन्नम कमाते हैं, क्योंकि उस कमाई के अंदर अगर अल्लाह को राजी किया हमने तो अल्लाह राजी होंगे, जन्नत मिलेगी। और उस कमाई के अंदर अल्लाह के हुक्मों को हमने रियायत नहीं किया, अल्लाह को नाराज किया, तो जहन्नम में चले जाएंगे। असल तो वो कमाता है बंदा, लहा मा कसबत वअलैहा मा इक्तसबत, असल कमाई तो वो होती है। और ये तो फजल है, उसकी तरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हुई है, हम फजल के देने के उसूल जाब्ते बनाए हैं। ये फजल देने की कटोरियाँ होते हैं, नौकरियाँ जो है ये हमारी जॉब वगैरह ये कटोरियाँ हैं, लीक की कटोरी है जो अल्लाह तबारक व तआला उसमें रख के अपना फजल अता फरमाता है, एक उनकी तरतीब है, उनकी सुन्नत है ये, इसलिए वो अल्लाह का माल है और अल्लाह ने हमें इम्तिहान के तौर पर दिया हुआ है। जो मिला है हमारे पास रहने वाला नहीं, खत्म हो जाए। एक जगह पर कुरान पाक में बड़ी अजीब बात फरमाई, फरमाया कि मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि तुम खर्च करो तो तुम खर्च नहीं करते, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वारिस कौन है, तुम जब चले जाओगे तो वारिस मैं हूँ। वमा लकुम अल्ला तुन्फिकू फी सबीलिल्लाह वइल्लाही मीरासुस समावात, तुम खर्च नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए मीरास है, यानी वही वारिस है। अगर तुम नहीं खर्च करोगे और तुम मर जाओगे तो लेगा कौन उसको, मैं ही लूंगा, फिर जब मैं लूंगा फिर नहीं दूंगा उसमें से कुछ भी, फिर वो तुम्हारा शुमार नहीं होगा। तुम्हारा शुमार होने के वास्ते ये है कि अब जो तुम्हारे पास, अरे भाई क्या हो रहा है, मूवी बना रहे क्या, हाँ उसको हटा दो, अगर आपने ले लिया है तो बड़ा मेहरबानी डिलीट करो। अगर तुम खर्च करते हो जिंदगी में अपनी, फिर वो तुम्हारे हिस्से में जाएगा, उसका तुमको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर तुम मरने तक नहीं खर्च करे और फिर हमारे ही पास वो आता है, बिलाखिर हम वारिस हैं, असल में पिछलों के कौन वारिस है, कारून का कौन वारिस हुआ, फिरौन का कौन वारिस हुआ, कौम आद का कौन वारिस हुआ, कौम समूद का कौन वारिस हुआ, कौम शुएब का कौन वारिस हुआ, कौम नूह का कौन वारिस हुआ, कौम फिरौन का कौन वारिस, अल्लाह तबारक व तआला ही वारिस है, और कौन वारिस है, उन्हीं का तो एक सिलसिला है। इसीलिए कुरान पाक ने फरमाया कि वमा लकुम अल्ला तुन्फिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ध, अल्लाह ताला ही वारिस हैं। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह वक़ातन, जो खर्च करने वाले हैं उसमें भी दर्जे हैं, नहीं खर्च करने वाले का तो हिसाब नहीं है। खर्च करने वालों में जो लोग फतह से, फतेह मक्का से पहले खर्च करने वाले हैं वो, और जो फतेह मक्का के बाद खर्च करने वाले हैं वो, खुद उनमें भी फर्क है। ये अल्लाह ने फरमाया, आदमी के अमल को भी देखा जाएगा कि किस मौके पर उसने खर्च किया, किस सिचुएशन में उसने खर्च किया, कैसी कंडीशन में उसने पैसा लगाया है। फतेह मक्का से पहले इस्लाम की कोई तारीख बनी हुई नहीं थी, इस्लाम को गलबा नहीं था उस वक्त, जिन लोगों ने लगाया उनका मर्तबा अलग है। फतेह मक्का के बाद नाम हो गया था, खूब मतलब कामयाबी हो गई थी, जश्न मनाया जा रहा था, इस्लाम को गलबा हुआ था, जब दिया लोगों ने, अरे उनका सवाब कम है, बिल्कुल नहीं दिया, वो तो हमारे पास आने वाला है। दिया तो देना भी कंडीशन के ऊपर है कि किस कंडीशन में दिया, किस हालत में दिया। इसलिए फरमा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह वक़ातल उलाइक अअज़म दर्जतन मिन अल्लज़ीना अनफक़ू मिन बाद वक़ातलु वकुल्लुहुम वअदल्लाहु अल-हुस्ना, हर एक के लिए अल्लाह ताला का वादा अच्छा ही है खर्च करने वाले के लिए, लेकिन मौके महल की बात होती है। इस मुल्क में, इन हालात में, इस फितने फसाद के जमाने में, इस शर के गलबे के जमाने में, इस जरूरतों के फैलने के जमाने में, इस परेशानी के अंदर हर आदमी टेंशन में, हर आदमी स्ट्रेस में, हर एक के ऊपर बिल सवार है, 10-10, 15-15 बिल सवार है, सर्दी में, गर्मी में, बारिश है, सर्दी है, हालात माफिक है, माफिक नहीं है, किसी तरह की परेशानी घर की भी है, अपनी भी कर रहा है आदमी, ऐसा भागम भागी में लगा हुआ है, लेकिन ऐसे मौके पर दीन की भी फिक्र है, ऐसे मौके पर दीन के कामों में भी हिस्सा ले रहा है बंदा, उसका बड़ा मुकाम है, बड़ी अहमियत है। इसलिए मेरे दोस्तों बात लंबी नहीं करनी है, बात आपके सामने आ गई है, आपको मालूम ही है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक बड़ा काम अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला के फजल से अंजाम दिया जा रहा है, काफ़ी खर्चा इसमें आता है, जैसा कि आपको कल बताया गया हर महीना $1,00,000 का खर्चा होता है, जाहिर है कि उसका इंतजाम होना है। और अभी ये काम जो भैया जो आपने देखा माशाल्लाह तरावी जो यहाँ पर अदा की गई, काफ़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, और इधर भी ये काम थोड़ा सा बाकी रह गया है, तामीर के इस काम में भी हिस्सा लेना है, जो बड़ा हाल आपको नजर आ रहा सामने राइट पे, ये जमात वालों के लिए बनाना तय किया गया है, फिर उसके बाद में भी 3 तहारतखाने और बनाए जाएंगे, फिर एक मेहमान खाना भी होगा, तो ये थोड़ा सा तामीर का काम भी इसमें अल्लाह ने अगर चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा, और मल्टीपल पर्पज़ के यानी मल्टीपर्पज़ के लिए काम आएगा। और बहुत ज़्यादातर हमारे जहन में तो ये है कि जब जमातें वगैरह हमारे पास आती हैं ऊपर, तो स्कूल मदरसा चल रहा होता है, तो फिर बेचारे दिन के वक्त में उनकी मशगूलियत में खलल हो जाता है, तो उसकी वजह से ये यहाँ बना दिया जा रहा है कि अब यहाँ जमात ठहरेगी, अपना काम करेगी, उसको कोई यानी उसको यकसुई रहेगी, मेहमान खाना भी रहेगा, तो उसके अतबार से इस बनने के अंदर भी आपका हिस्सा लगना है। गर्ज ये है कि रमज़ान का मुबारक महीना खर्च का ही महीना है, रमज़ान का मुबारक महीना जितना ज़्यादा खर्च करे उतना ज़्यादा अल्लाह से लेने का महीना है, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फर्जों के बराबर है, इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने ज़कात में है ना रमज़ान में ही निकालते हैं। इस इदारे के अंदर भी ज़कात आपकी लग सकती है, इदारे में आप ज़कात दे सकते हो, ज़कात भी दो, ज़कात के अलावा भी दो, चूँकि बहुत से कामों में ज़कात नहीं लगती, फिर वह लंबे रास्ते से ला के वो लगाना पड़ता है, जैसे तामीर है, तामीर में ज़कात नहीं लगती, अगर डायरेक्ट लगाना चाहे तो उसको डोनेशन देना पड़ेगा आपको, लेकिन अब ज़कात को ज़कात के माल को लगाना बोले तो एक उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, वो किसी को देना और फीस में वो दाखिल होना, फिर वहाँ से वो मदरसे के बैतुल माल में जाना, फिर वहाँ से वो आना, लंबा काम होता है उसके पीछे, मगर लगती है ज़कात मदरसे में भी। इस वजह से आप हज़रात से ये गुजारिश है कि इस इदारे को अपना इदारा समझिए और इसमें खर्चे में हिस्सा लेने को एक बहुत अहम काम समझकर, अहम जिम्मेदारी समझकर, सवाब का काम और अपना काम समझ के आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की फिक्र फरमाइए। आपकी हिम्मत होगी, आप थोड़ा सा हौसला दिखाएंगे, हम सबके लिए सहूलत हो जाएगी, इंतज़ाम करने वालों को सहूलत होगी, इदारा चलाने वालों को सहूलत होगी, हाफिज़ बन रहे बच्चे उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा, आलिम बन रहे बच्चे उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा, ज़ैबिया सुपरवाइजरी का कितना बड़ा काम अल्लाह ले रहा है आपको पता है, ये सब फ्री सर्विस है, कोई फीस वीस नहीं चार्ज की जाती है, उसमें आपका हिस्सा पड़ जाएगा, फतवे देने के अंदर आपका हिस्सा पड़ जाएगा, काउंसलिंग में शादियों के बचाने में जो कोशिशें वगैरह होती हैं उसमें आपका हिस्सा पड़ जाएगा, थोड़े से पैसे देने की वजह से ये काम आसानी से चल पड़ेंगे, और ये सारे काम जो आप नहीं कर सकते मगर आपके करने में शुमार किए जाएंगे अल्लाह के पास, क्या नेमत है, कितनी बड़ी बात है कि आपके खर्चा देने की वजह से उन लोगों ने ये काम किए और अल्लाह उसका सवाब आपको देगा, तो जो काम आप नहीं करें वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। हाफिज़ आप नहीं बने, हमारे पैसों से बच्चे हाफिज़ बन गए, हिफ्ज़ का सवाब आपको मिल जाएगा, आलिम कोई बन गया, आलिम होने का सवाब आपको मिल जाएगा, मसला बता दिया गया, मसले का सवाब आपको मिल जाएगा। जितने दीन के काम होते हैं जब उसमें किसी आदमी के माल से उनमें सहूलत होती है, तो काम में अमल में जितनी चीज़ें वजूद में आई हैं सब में उस पैसा लगाने वाले का अल्लाह तबारक व तआला हिस्सा बनाते हैं, बैठे बिठाए आदमी को सब कुछ मिलता है दीनी एतबार से। इसीलिए फरमाया दो ही आदमी काबिल रश्क हैं दुनिया में, एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और वो लोगों को बताता है जिसकी वजह से लोग वही के मुताबिक अमल कर सकते हैं, और दूसरे वो जिसको आदमी अल्लाह ने माल दिया और वो दीन के कामों में लगा देता है, सिर्फ माल देना काबिल रश्क नहीं होता, वो दीन में लगा देता है, तो वो जितने दीन के कामों में लगा लेता है उसको सबका सवाब बैठे बिठाए मिलता है, काबिल रश्क है। दो लोग दुनिया के अंदर रश्क के काबिल होते हैं, इल्म वाला और माल वाला, जबकि इल्म वाला उसको सही जगह पर लगाता रहे और माल वाला उसको सही जगह पर लगाता रहे। तो माल और सलाहियत ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर मुझे और आपको दी हैं, इसलिए मेरे दोस्तों रमज़ान के इस मुबारक महीने में हर आदमी को हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना है कि मेरी वजह से फलां की ज़रूरत पूरी हो जाए, फलां का काम चल जाए, आसानी हो जाए, और बहुत स्मूथली अगर चलने लग जाए इदारा तो बताओ कितने और ज़्यादा काम करने का इनको फिक्र भी पैदा होगी, मौका भी मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करो और बताओ कि कौन साथी कितना हिस्सा जो है ना इस महीने में हमारे